अब चलते हैं दूसरी नसीहत पे। दूसरी नसीहत क्या है? कसरत से ये दुआ मांगना। क्या? ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 88 है, वज़न्नूनी इज़्ज़हब मुगादिबा फज़न्ना लन नक़दिर अलैहि फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। मछली वाले यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, जबकि वो गुस्से से चल दिए और ख्याल किया कि हम इन्हें ना पकड़ेंगे, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे कि इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ, यानी मैंने अपने आप पर जुल्म किया। बस हमने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और हमने इन्हें गम से निजात बख्शी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात दिया करते हैं। बहुत ही मारूफ दुआ है और हम में से बहुत सारों को याद भी है। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में फरमाते हैं, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं कि वो मुसीबतों में हों और तौबा तायब होकर हमारी तरफ रुजू करते हुए हमें पुकारें, और ख़ास तौर पर जब वो मुसीबत की हालत में इस दुआ के ज़रिए से पुकारें। ये तो कुरान की आयत थी ना, इसी बात को अल्लाह के नबी की एक हदीस से भी बताया गया। तो आप कह सकते हैं कि इस दुआ के पढ़ने की नसीहत अल्लाह ने भी फरमाई और नबी सल्लम ने भी फरमाई। क्या है वो हदीस? दावतु ज़िन्नूनी इस दुआ वहुवफ़ी बतनिल हूत ज़ुन्नून। ज़ुन्नून कहते हैं एक मछली वाला, नून कहते हैं असल में मछली को, तो मुराद है मछली के पेट में जो थे और मुराद हज़रत यूनुस हैं। दावतु ज़िन्नून इस दुआ वहुवफ़ी बतनिल हूत। ज़ुन्नून की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर की थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। तो क्या होता है इसके बाद? फ़इन्नहु लम यदु बिहा रजुलुम मुस्लिमुन फी शैइन क़त्तु इल्लस्तजाबल्लाहु लहु। जो मुसलमान भी अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलिमात के साथ दुआ करेगा तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाएगा। यह अहमद की रिवायत है और तिरमिज़ी की भी रिवायत है। इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह अपनी किताब अल फ़वाइद में लिखते हैं, तौहीद जैसी कोई ऐसी नेमत नहीं जिससे दुनिया की शिद्दतों को दूर किया जा सकता हो। हाईलाइट करें, दोबारा बोलती हूँ, तौहीद, बस इस पे ही मेरा तो सारा फोकस होता है। अगर इस मुसीबत से बच गए और तौहीद पुख्ता हो गई है ना, तो बच गए, फिर तो ये हमारा सबसे बड़ा उस्ताद बन गया। वल्लाही अल्लाह तौहीद सिखाने के लिए हमें ऐसे कचोके लगाते हैं, वो कहते हैं ना, हैंड्स अप, सीधे हो जाओ, हिलना नहीं। आजकल यही कैफियत है। मानते हो मुझे बड़ा कि नहीं? अल्लाह अकबर मानते हो? इयाक नअबुदु पर यकीन है? इस शिद्दत से अल्लाह ताला आपको मुझे आजकल यकीन दिला रहे हैं कि हाँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं, और सब बड़ों की बड़ाई दिल से निकल जाएगी। तो तौहीद जैसी कोई ऐसी नेमत नहीं जिससे दुनिया की शिद्दतों को दूर किया जा सके। इसीलिए परेशानी की दुआ भी तौहीद के जरिए है। कैसे है तौहीद? इसमें देखिए जरा लफ्ज़ों को, पहले है ला इलाह, फिर इल्ला अंता, फिर सुभानका। तीन चीज़ें इसमें अल्लाह की शुरू में, और एंड पे क्या है? इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं सबसे छोटा, अल्लाह सबसे बड़ा। यानी आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, अल्लाहु अकबर और इन्नी असगर। और इसको भी अलग करके भी दिखाती हूँ क्या चीज़ है। तौहीद जैसी कोई नेमत नहीं जिससे दुनिया की शिद्दतों को दूर किया जा सकता हो। इसीलिए परेशानी की दुआ भी तौहीद के ज़रिए है। और मछली वाले यानी यूनुस की जो दुआ है, अगर कोई भी मुसीबत ज़दा शख्स इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह ताला से मांगे, तो अल्लाह तौहीद की बदौलत इसकी परेशानी ज़रूर दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। देखिए, बड़ी मुसीबतों में डालने वाला, सबसे बड़ी मुसीबत जो किसी बंदे पे है ना, मैं चुप करूँगी, आप सोचेंगे, फिर मैं बोलूँगी। सबसे बड़ी मुसीबत इस दुनिया में क्या है? लिखें, सोचें, जितना मर्जी वक्त ले लें, मैं चुप रहने को तैयार हूँ। دنیا میں سب سے بڑی مصیبت میں کون مبتلا ہے؟ چلیے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا جملہ، ہر ایک نے سوچ لیا، لکھ لے، اس سے ہمیں پھر یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہمیں بعد میں اپنی کس چیز پہ محنت کرنی ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت شرک ہے، مشرک سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں، اس سے زیادہ دل اندھیرا کسی کا نہیں، کھٹن والا معیشت اندن کا اور کسی کی نہیں، اندھیروں میں اندھیرے کسی کے نہیں۔ تو سب سے بڑی مصیبت شرک، اور اس سے نجات دلانے والی چیز توحید۔ یہ جو لا الہ ہے نا، الہ تو آگے آئے نا، لا کے تاغوتوں کی گردن پہ لا کی تلوار رکھ دو۔ تو لہٰذا یہی مصیبت کے وقت مخلوق کی پناہ گاہ بھی ہے، حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور محفوظ قلعہ بھی ہے، اور مدد لانے کا ذریعہ بھی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ تو میں نے آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ اپنے لیے یہ کام لکھیے۔ میں نے صرف آیت کریمہ پڑھنا نہیں ہے، میں نے اس پہ غور بھی کرنا ہے۔ اب ذرا سا اس کلمے کے جو تین حصے نا، اس کو الگ الگ کر کے ہائی لائٹ کریں، تو پھر آپ کو تھوڑا سا زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیں اس پورے کلمے میں تین چیزیں ہیں، میں پہلے 1, 2, 3 کروں گی، پھر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہے لا الہ الا انت، یہاں پہ ایک پوز ہے، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں تو آ گیا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ کے سوا۔ اور لفظ الہ میں 9 چیزیں آتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ غور و فکر کرتے جائیں۔ دوسرا اس کا حصہ ہے سبحانکا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ دو الگ تو نہیں ہے، ایک ہی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانکا۔ حالانکہ عربی میں سبحانکا پورا ایک کلمہ ہے، پورا ایک جملہ ہے، بلکہ پہلے کا مطلب کیا ہے کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرے میں یہ کہ تو پاک ہے۔ تو تو کس سے پاک ہے؟ لوگ جو کچھ بھی تجھے کہتے ہیں، لوگ تیرے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو لا الہ الا انت میں اللہ کیا ہے وہ بتایا گیا، اور سبحانکا میں لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں اس سے بیزاری، کہتے رہو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، جو کہنا ہے کہہ لو، تمہاری مرضی ہے، تمہارا مسئلہ، میرا تو نہیں۔ تم مجھے برا کہو، میرے بچے بناؤ، میری بیوی بناؤ، میرے بیٹے بناؤ، میرے ہی بنائے ہوئے بندوں کو میرا شریک بنا دو، میری مخلوق سے ڈرو، مجھ سے نہ ڈرو، پاک جو مرضی کہتے رہو، کرشنا کہو، رادا کہو، لات کہو، منات کہو، سبحانک، میں پاک ہوں۔ اور پھر تیسرا جملہ، انی کنتم من الظالمین۔ یعنی ایک عرب ٹیچر تھی ہماری، بہت ہی پیاری ساتھی، تجوید پڑھاتی تھی ہیوسٹن میں۔ تو میں 2-3 سال پہلے جب گئی تو ساتھیوں نے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہیں، اور بالکل لاسٹ فیزز ہیں ان کے، کینسر کی لاسٹ اسٹیج تھی۔ تو آپ ان کو ملیں گے؟ میں نے کہا، دل پہ بڑا جبر کیا ساتھیوں نے جو بتائی کیفیت، تو میرا اندر سے دل ان چیزوں پہ بہت چھوٹا ہے، کسی کو پتا نہ ہو، مجھے پتا ہے، مجھ سے کسی کی اس رنگ کی کیفیت نہیں دکھتی، میں کسی کو انجیکشن لگتا نہیں دیکھ سکتی۔ خیر قصہ مختصر، یہ مجھے لے گئے، میں نے کہا ظاہر ہے ہاسپٹل میں ہوں گی، اور پتہ نہیں ان کی کیا کیفیت ہے، پہلے ہی بتا چکے تھے، بال جھڑ گئے، یہ وہ، جس سے نا، یقین کرے دل پہ پتھر رکھ کے میں گئی، اور ڈروں کہ میں ان کو دیکھوں گی کیسے۔ پتہ چلا کہ نہیں، ہاسپٹل میں نہیں ہے، ڈاکٹرز نے، نرس اور وہ جو ان کو آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی دے کے تو گھر میں بھیج دیا، جیسے عموماً اینڈ پہ کیا جاتا ہے۔ بلیو می، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ جمعہ کا دن تھا، ہم گئے 2-3 ساتھی تھے، بیل کی، ان کو پہلے بتا دیا تھا ہم لوگ آ رہے ہیں، ڈور کس نے کھولا؟ انہوں نے خود کھولا۔ جب ڈور کھولا تو ان کے ناک میں آکسیجن کی کیا ٹیوب ہوتی ہے، وہ لگی ہوئی تھی، پورے گھر جتنی لمبی چوڑی، جیسے پاکستان میں باہر پائپس نہیں پڑے ہوتے گارڈنز میں پانی کے، اتنی لمبی سی تار تھی، جو دور دیکھا تو کونے میں سلنڈر تھا، لیکن وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ پورے گھر میں اس کے ساتھ پھر سکتی تھی۔ اور پلس اس کے ساتھ ان کے ایک سائڈ پہ ایک بیگ بھی لگا ہوا تھا، سر پہ انہوں نے ٹائٹ، ویسے عرب لوگ سر پہ اسکارف رکھتے ہیں، سر پہ اس طرح رکھا تھا کہ صاف لگ رہا تھا کہ بال نہیں ہیں، لیکن ہمیں نہیں دکھ رہے تھے۔ چہرے پہ اسمائل، اتنی خوشی سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، میں حیران ہی ان کو دیکھوں، تو انہوں نے کہا بس ہم آپ کو یہی دکھانے آئے ہیں۔ ہمیں بٹھا کر وہ اٹھ کے کچن، اور کہنے لگیں وہ کہ میرے شوہر جو ہے وہ جمعہ پڑھنے گئے، وہ گھر ہوتے ہیں اس وقت، وہ گئے اور بچے تو پاس تھے نہیں شاید کہیں، آدھا پونا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے، میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کے چہرے پہ نہ دکھ نہ تکلیف اور اسمائل۔ اب فریج کھول کے بوٹلس لا رہی ہیں کھول کے جوس کی، تو ان سے پکڑی نہیں جا رہی جو ساتھیوں نے پکڑی، کہیں ہمارے سامنے وہ جو عربوں کی سویٹس ہوتی ہیں وہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے غلط بتایا، किसी जगह से ना लगे कि इनको कोई बीमारी है। तो ऐसे फिर मैंने उनसे कहा कि सिस्टर गायदा, गिव मी सम नसीहा, कोई एडवाइस दें। सीरियन थी आई थिंक। फिर हम सारे ही थे तो कहने लगी, या अख्ती ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। इसको उन्होंने कोई 10-5 मिनट का हमारे सामने एक्सप्लेन किया। आज भी मुझे उसकी लज्जत आ रही है, इतना मैंने इंजॉय किया। तो ये जो बात 3 चीज़ों में ना, ये उन्होंने बताई। तो याद रखिए कि तौहीद से प्यारी दौलत कुछ नहीं है। आप डॉलर्स को बड़ा कहते हैं, पाउंड्स को बड़ा कहते हैं, क्रोन को कहते होंगे, तौहीद बड़ी। तौहीद से चीज़ें खरीदा करें, तौहीद से दुआएं मनवाया करें, तौहीद से अल्लाह से फरमाइशें, बड़े बड़े सौदे कर लिया करें। बैंक में कुछ नहीं है, दिल के बैंक में तौहीद रखिए। देखिए लोग फिर उंगलियां दबाते दबाते काट भी जाएंगे ना, उनको वजह नहीं समझ आएगी, सोर्स नहीं मिलेगा उनको कि ये सब हुआ कैसे। और असल आज हमारा मसला ये है कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। पैसे जेब में हम कहते हैं शुक्र है, वॉलेट घर तो नहीं रह गया, नहीं नहीं है, कार्ड अंदर है, फोन है, अल्लाह हाँ वो भी साथ ही है। इसकी जगह ये सब चीज़ें सानवी और एक अल्लाह का वजूद। देखिए किसी बहुत बड़े से अगर आपकी रिश्तेदारी हो ना, तो आप मान करते हैं वो मेरा बड़ा है, वो मेरा दोस्त है, वो फलां। तो बड़ों के बड़े से दोस्ती कर ली थी तो क्या वो आपको फिर रुस्वा करेगा? तो ज़िंदगी का हर मसला उसके सामने पेश कर दें, बाकी लोगों को तो बताने को दिल ही नहीं चाहेगा। तो अब इस शऊर से इसको भी ज़रा 2-3 दफ़ा मिल के मांगिए।
ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन।
हम सब को अपनी मार्फत दे, हम उसको सबसे बड़ा समझें और बाकी सब उसके बाद।
आपने कहा था कि हमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या लगती है, तो मेरे ज़हन में बिल्कुल यही आया था कि अल्लाह की वहदानियत और उस पे जो यकीन जो पूरा नहीं है तो सबसे बड़ा लॉस हमारा।
असल ये है, देखिए कि एक होता है ना, नुकसान हो रहा है तो बंदा पूरा कर लेता है, जब एहसास ही ना हो कि नुकसान हो रहा है तो फिर कैसे पूरा करेंगे ना। वो कहते ना कि कौम के दिल से एहसास जियाँ जाता रहा। हम सब को तौहीद के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद जानने की, इसको मज़ीद समझने की। आप देखिए आपके बंद दुखदे खुल जाएंगे। अगली दुआ इससे भी खूबसूरत है जिसमें आपको इंशाल्लाह इसका और यकीन आएगा कि सारे दुख और सारी तकलीफ़ें सिर्फ अल्लाह ताला ही दूर करता है। तो चलते हैं तीसरी नसीहत जो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाई, और वो क्या है कि मुसीबत की सख्ती से पनाह मांगना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़दाई व शमातिल आदाई। ए अल्लाह, मैं मुसीबत की सख्ती से, तबाही तक पहुँच जाने से, क़ज़ाओ क़दर की बुराई से और दुश्मनों के खुश होने से पनाह मांगता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ही से दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, यानी थोड़े से अल्फाज का फ़र्क है, मुसीबत की सख्ती से, तबाही तक पहुँच जाने से, क़ज़ा व क़दर की बुराई से और दुश्मनों के खुश होने से पनाह मांगें। दोनों रिवायतें बुखारी की हैं। बड़ी ही प्यारी दुआ है, ज़रा सा इसके एक एक लफ्ज़ पे गौर करते हैं, लफ्ज़ी तर्जमा बोलूँगी। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, आऊज़ु बिका, पनाह में आता हूँ तेरी, मिन से, अब देखिए ना लफ्ज़ पनाह को भी ज़हन में रखें ज़रा, किस किस चीज़ से अल्लाह तेरी पनाह में, तेरे शेल्टर में आता हूँ। नंबर एक, जह दिल बलाई, मुसीबत की सख्ती से। जहद कहते हैं सख्ती को, और बला बलाएं, मुसीबत व दारा की और पहुंचना, इदराक कहते हैं ना दारा का, याद रखो, दारा की पहुंचना, शकाई तबाही का, यानी मैं तबाही तक ना पहुंच जाऊं, व सू इल कदाई और बुरी तकदीर से, यानी कजाओ कदर की बुराई से, व और शमातती खुशी, शमाता कहते हैं खुशी और ख़ास तौर पे वो भी दुश्मन की। सूरत अल-इराफ में भी हज़रत मूसा और खिजर के बीच में एक मुकालमा है जिसमें आता है ला तुश्मित, कि ना तो खुश कर बियल आदाई दुश्मनों को, तो वो भी यही लफ्ज़ है, आदा अदूफ से दुश्मन। ए अल्लाह, मैं मुसीबत की सख्ती से, तबाही तक पहुंच जाने से, कज़ाओ कदर की बुराई से और दुश्मनों के खुश होने से पनाह मांगता हूँ। क्या पता चला, चार चीज़ें हैं, जहतिल बल्ला, दरकी शका, सू इल्कदा व शमातत इलादा। पहली ही क्या आ गई, मुसीबतों की सख्ती। देखिए, एक तो होता है कि मुसीबत आ गई तो फिर मुश्किल में पड़े। ये दुआएं अभी तक जो हम सीख रहे हैं ये क्या है कि ये मुसीबत आने से पहले ही अगर आप मांग लेना तो अल्लाह आपको उससे बचा लेगा। और ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक का क्या था कि मुसीबत आ गई है और फिर अल्लाह आपको उससे निकाल देगा। तो क्या पता चला कि हम में से हर एक हर वक्त किसी न किसी खतरे के सामने है। एक लम्हे में मुसीबत आ सकती है। बस आप देखिए कि आप रोज़ गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, एकदम गाड़ी खड़ी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, टायर पंक्चर हो गया। अब ये क्या है, जो मुसीबत आती है ना वो उस वक्त बहुत बड़ी लगती है। फिर आप देखिए कि दरकी शिका, तबाही के करीब पहुँचते हैं, कई दफ़ा आपको लगता होगा बिल्कुल हादसा होते होते बचता, चोट लगते लगते बचती है, हंडिया जलते जलते रुक जाती है, आप वक्त पे पहुंच गए, दूध उबलते उबलते बचता है। तो ये इन दोनों का नतीजा होता है कि अल्लाह ताला एन वक्त पे जिसको आप कहते हैं ना हाथ दे के रोक लेता है। सूल कदा क्या, तकदीर की बुराई। देखिए, ये दुआ आपको मुझे ये बताती है कि तकदीर के लिखे हुए बुरे भी दुआओं से बदल जाते हैं। अगर आपको लगता है ना मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, और मेरे हाल जवानी में सबको ये लगता है मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरी दोस्त मेरे से खुश किस्मत है, मेरी बहन की किस्मत ज़्यादा अच्छी है, मेरी कज़न्स तो ज़्यादा ही खुश किस्मत है, नहीं, तकदीर की बुराइयाँ भी टल जाती हैं दुआओं से। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को भी बदलती है और उम्र भी लंबी कर सकते हैं आप दुआ से, कहला मेरी उम्र में इजाफा कर। शमाता तिलादा क्या, ये उसको पता होगा जो कभी किसी ऐसी आजमाइश का शिकार हो कि जिसमें दीन इन्वॉल्व हो। याद रखिएगा कि दुश्मनों की खुशी, और वो भी कब, जब मामला दीन का हो। आज हम मुसलमान मुश्किल में पड़ते हैं, दुश्मन खुश होते हैं। मूसा और हारून दो भाई थे, आपस में इख्तलाफ होने लगा था कि मूसा के बाद हारून ने कौम को क्यों नहीं रोका बछड़े की पूजा से, शिर्क से। गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम एक रिएक्शन शो करने लगे तो वहाँ हारून ने रोक दिया कि मेरे साथ अपने दुश्मनों को खुश न कर। तो लिखिए, सवाल लिखिए, दुश्मन कब खुश होते हैं? नंबर एक, जब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है। कुरान में सूरह आले इमरान में जो तफसीर कर रहे हैं आयत बायत, हमने ज्यादा अरसा नहीं गुजरा आयत पढ़ी थी कि बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिहिम, इनको हर वो चीज खुश करती है जो तुम्हें तकलीफ देती है। इसी तरह दुश्मन कब खुश होता है? जब दोस्त दोस्त से लड़ता है, मुसलमान मुसलमान से लड़ता है, जब मुसलमान पे कोई आफत पड़ती है, जब मुसलमानों पे वबाएं फूटती हैं, जब दो मुसलमान आपस में झगड़ते हैं और इनको मदद के लिए बुलाते हैं, तो दुश्मनों की खुशी से बहुत दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें बचाए। जाहिर है कि दुश्मन हमारी खुशी पे तो खुश नहीं होगा ना, वो हमारे गम पे ही खुश होगा। कहते हैं ना कि किसी दुश्मन के मरने का गम ना करो, अपनों ने भी मर जाना है। तो दुश्मनों की खुशी, और स्पेशली देखिए, अगर दुश्मन के लफ्ज़ को आप वर्ल्ड लेवल से छोड़ दीजिए, अपने ऊपर ले आइए, आपकी ज़ात से पूछिए, कोई आपका दुश्मन है? किसी को आपसे राह जाते का कोई बैर है? क्या किसी को आपसे हसद है? हसद करने वाले भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर अपनी खुशियों को बहुत डिस्प्ले नहीं देना चाहिए। चलो चंद लोगों की दुआएं भी ले आए तो जो हासिदीन थे उनका शर समेट कर आ गए। आप देखिए कि आज जैसा डिस्प्ले का कल्चर है, हम थोड़ी सी नेमत को इतना बढ़ा के दिखाते हैं। पिज़्ज़ा खा रहे थे, सभी खाते हैं, आप उसकी तस्वीर लगा दें जाकर नेट पे, तो वो देखकर पता नहीं कितनों का दिल जलेगा जिनको आज माँ के कहने पे दाली खानी पड़ रही है। हो सकता है कि उस वक्त आपकी उस खुशी को नज़र लग जाए। तो पूरे यकीन के साथ इन दुआओं को मांगने की ज़रूरत है। मिलके सब मिलके पढ़िएगा और एक एक लफ्ज़ पे गौर करिएगा कि हम इसमें किस चीज़ की पनाह में आ रहे हैं और किस चीज़ से पनाह मांग रहे हैं।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहरिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमातिल अअज़ाई। अल्लाहुम्मा
आप देखिए कि ये बड़ी पर्सनल दुआ है। मैं खुद इस दुआ को कह सकती हूँ कि जिसको आप कहते हैं कि ये मुजरब नुस्खा है। कुछ दुआएं जो होती है ना वो जमा में होती हैं और अमूमी कैफियत पेश करती हैं ना या सबके लिए होती हैं। ये दुआ बिल्कुल आप कैसे लगेगा कि आपके और अल्लाह के बीच का राज है। कई दफ़ा आप जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं कि आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी को कुछ बता ही नहीं सकते, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, किसी से मशवरा नहीं मांग सकते। बेहतरीन दुआ। आज भी आप में से कभी किसी जिंदगी के फैसले के वक्त परेशान हो, क्या करूं क्या ना करूं। बाज़ दफ़ा लोग खानदान से छुपाते हैं बातें, बाज़ दफ़ा करीबियों से छुपाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये दुआ मांगे कि अल्लाह तू मुझे जानता है और बस मुझे तो तेरा ही सहारा चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि ताल्लुक मजबूत हो पीछे। अल्लाह से ताल्लुक हो तो आप तो एक दुआ नहीं पढ़ सकते, एक सवारा नहीं पूरा कर सकते, आप पांच सवारों की क्या बात करते हैं। तो इन दुआओं में जहां भी लफ्ज आए ना अल्लाह का, अल्लाह की किसी सिफत का, उस पर गौर करें। अगली दुआ जो हमारे आज के सेशन की आखिरी दुआ होगी इंशाल्लाह, वो है चौथी नसीहत, घर से निकलने की दुआ पर पाबंदी करना चाहिए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान अपने घर से निकलते हुए ये कहे, मसीह की बात देखिए, हर दुआ में अल्लाह का नाम है, कोई मुकाबला कर सकता है रब से? हर नसीहत में अल्लाह का नाम है, कोई ग्लव्स, कोई मास्क, कोई शेक हैंड ना करना, ये तो बाद की चीज़ें थी, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सब में भी असर अल्लाह नहीं डालना है। पूरी प्रिकॉशंस भी ले लोगे ना, बीमारी लिखी भी आ जाएगी और अल्लाह ने बचाना है तो जिनके पास असबाब नहीं है बताइए वो कैसे बचेंगे, अल्लाह का नाम उनको बचाएगा। तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ मैं घर से निकल रही हूँ, मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और ना गुनाह से बचने की हिम्मत है और ना ही नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह ही की तौफीक से। तो इसी वक्त उससे कहा जाता है, तुझे हिदायत दे दी गई हुदीता, तेरी तरफ से किफायत कर दी गई कुफीता, और तुझे बचा लिया गया वबुकीता। अब कौन कहता है? हदीस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन अलग से पता चलता है कि एक फरिश्ता कहता है ये बात। यानी जो बंदा घर से निकलते हुए ये दुआ मांग लेता है तो फरिश्ता उसको तीन बातों की दुआ देता है या खबर देता है, हुदीता और कुफीता और वकीता। हिदायत दिया गया, किफ़ायत किया गया और तू बचा लिया गया। ये सुनकर शैतान उससे दूर हट जाता है और दूसरा शैतान उससे कहता है, अब ये जुमला नोट कर ले, उस आदमी पर तेरा बस कैसे चलेगा जिसे हिदायत दे दी गई, जिसकी तरफ से किफ़ायत कर दी गई और जिसे बचा लिया गया। ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो आखिर क्या जादू है, क्या असर है इसमें? ज़रा से इस दुआ का लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे लेकिन पहले एक दफ़ा आप लोग मिलके मांगिए। कौन पूरी पढ़ते हमेशा घर से निकलते हुए शऊर के साथ, जैसे घर से निकलते हुए चाबी पकड़ते हैं या जैकेट पहनते हैं हमेशा। जी बढ़िया। अगर नींद में भी कोई ले जाए आपको तो भी आप पढ़े। जी
बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
अब देखिए कि है क्या इसमें बात, कि इसके साथ फरिश्ते भी बोल उठे। तो जरा से इसका लफ्जी तर्जमा लिखिएगा। बिस्मिल्लाहि साथ नाम अल्लाह के, एक और दुआ अल्लाह के नाम के साथ, तवक्कल तो मैंने तवक्कुल किया या मैं तवक्कुल करता हूँ, अल्लाही अल्लाह पर, ला नहीं हौला घेरने वाला, वला और ना कुव्वता कोई कुव्वत, इल्ला मगर बिल्लाही साथ अल्लाह के। बिस्मिल्लाही तवक्कल तो साथ नाम अल्लाह के मैं तवक्कल करता हूँ अल्लाह पर, नहीं है कोई गुनाह से बचने की हिम्मत और ना ही नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक से। देखिए ये मुसलमान के अकीदे का बरमला इजहार है। कोई माने ना माने, आजकल तो सब मान गए कि घर में सुकून है, घर एक पनागा है। जब औरतों को कहा जाता है वह कर नफी वो युति कुन, तो वो उसको कैद समझती हैं और चादर और चार दीवारी को बदनाम किया जाता है। लेकिन सच बताइए, सुबह के निकले हों, दोपहर को निकले, शाम होते ही किधर जाने को दिल करता है? घर। आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, आप टम्बकटू चले जाएं, दो चार हफ्ते गुजारने के बाद दिल किधर जाता है? घर। घर में सुकून है। हम घरों में होते हैं ना, हम बहुत सारे जरासीमों से बचे होते हैं, बद नजरी के जरासीमों से, बद निगाही से। बाहर बहुत गंदे गंदे जरासीम फिरते हैं, शराब कबाब के नशे में धुन लोग, तासुब के मारे हुए लोग, खराबियां करने वाले, चोर चक्के और नजरें दूसरों पे रखने वाले। बाहर की दुनिया में इंसान बहुत खतरों में होता है। चोर हमारे माल के पीछे लग जाएंगे और कुछ लोग हमारे हुस्न के पीछे लग जाएंगे। जब औरतें अपनी मर्जियां करती हुई सड़कों पे निकलती हैं तो फिर अल्लाह भी आजकल लग रहा है कि अपनी मर्जी मनवा रहा है। कर लो फिर जाओ अपनी मर्जी करो जो तुम्हारा दिल करता है। मर्जियों को तोड़ने वाली ये दुआएं। जब आप अल्लाह के नाम के साथ घर से निकलेंगे ना, तो इंशाल्लाह बाहर के फितने और जरासीम आपको नहीं चिपकेंगे। और आज के हालात में तो मुझे यही समझ आया है, लोग मानने को तैयार हैं, सिर्फ हम मुसलमान उनको ये यकीन दिला दें कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे फितने हैं। अल्लाह ताला रोज ही कोई ना कोई बात दिमाग में डालते ही रहते हैं। आज सुबह से एक और चीज जहन में चल रही है। देखिए आजकल लॉकडाउन की बातें हैं, आइसोलेशन की बात है ना, आइसोलेट हो जाओ। चूंकि बात करें घर से निकलने की, आप कहेंगे घर से तो अब कोई निकलने ही नहीं देता, तो फिर दुआएं क्यों याद करें निकलने की? तो अल्लाह के कुरान से आपको एक बहुत बड़ी दलील है। आज नहीं करूंगी, कल उसी से शुरू करूंगी। आपको टाइम देती हूँ, सोच के रखिए कि अल्लाह के कुरान में दलील है आइसोलेशन की, कहाँ क्या। अगला सेशन इसी से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला में फहम दे, तदब्बुर की तौफीक दे, गौर व फिक्र करने अल्लाह दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत्तवाबुर रहीम।